नमस्ते, मैं आराफ हूँ। नाइन ना ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, होम कंप्यूटर्स 100 आइकॉन्स दैट डिफाइंड अ डिजिटल जनरेशन, एलेक्स विल्शायर की लिखी और जॉन शॉर्ट की तस्वीरों से सजी कंप्यूटर इतिहास की दृश्यात्मक पुस्तक है। इसे द सेंटर फॉर कंप्यूटिंग हिस्ट्री कैम्ब्रिज के संग्रह के सहयोग से तैयार किया गया है। पुस्तक 1960 के दशक के शिक्षण उपकरणों की पृष्ठभूमि से शुरू होकर मुख्यतः 1970 से 90 के दशक तक घरेलू कंप्यूटरों के उभार को देखती है। इसमें अल्टेयर, सिंक्लेयर, बीबीसी माइक्रो, कमोडोर, एप्पल, आईबीएम और एकॉर्न जैसे परिचित नामों के साथ इंटरटेक, ऑरिग, थॉमसन और रोबोट्रॉन जैसे कम चर्चित निर्माता भी आते हैं। इसका उद्देश्य केवल मशीनों की सूची बनाना नहीं है, हर चयनित कंप्यूटर के रूप, इंटरफेस, तकनीकी विचार, निर्माताओं और सांस्कृतिक प्रभाव के माध्यम से यह बताती है कि निजी कंप्यूटिंग रोजमर्रा के घरों, शिक्षा, काम और कल्पना का हिस्सा कैसे बनी। नई तस्वीरें, विज्ञापन, पैकेजिंग और मैनुअल इसे तकनीकी संदर्भ और डिजाइन इतिहास दोनों के लिए उपयोगी बनाते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, 100 मशीनों के जरिए घरेलू कंप्यूटिंग का बहुकेंद्रीय इतिहास। पुस्तक की सबसे स्पष्ट विशेषता इसका चयन है। यह इतिहास को कुछ विजेता ब्रांडों की सीधी प्रगति के रूप में नहीं दिखाती, बल्कि 100 अलग मशीनों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी प्रयोगों का परिदृश्य बनाती है। कमोडोर 64, सिंक्लेयर ZX स्पेक्ट्रम, बीबीसी माइक्रो और एप्पल मैकिंटोश जैसे व्यापक प्रभाव वाले कंप्यूटरों के साथ एसडीसी, इंटरटेक, थॉमसन, ऑरिक और रोबोट्रॉन जैसे आज अपेक्षाकृत अपरिचित नाम शामिल हैं। इससे पाठक को समझ आता है कि घरेलू कंप्यूटर का कोई एक अनिवार्य रूप नहीं था। अलग देशों, कीमतों, वितरण व्यवस्थाओं और उपयोगकर्ता समुदायों ने अलग प्राथमिकताएं पैदा की। ब्रिटेन में कम लागत और प्रोग्रामिंग संस्कृति महत्वपूर्ण थी, जबकि अन्य बाजारों में कार्यालय अनुकूलता, शिक्षा, घरेलू मनोरंजन या स्थापित कंपनियों की विश्वसनीयता निर्णायक हो सकती थी। पुस्तक अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और जापान की मशीनों को साथ रखकर इस विविधता को मूर्त रूप देती है। पूर्वी जर्मनी जैसे संदर्भों की मशीनें भी इस बात की ओर संकेत करती हैं कि तकनीकी विकास केवल एक बाजार की कहानी नहीं था। यह पद्धति असफल या सीमित बाजार वाली मशीनों को भी इतिहास में जगह देती है। इसलिए पुस्तक सफलता को केवल बिक्री से नहीं मापती, बल्कि विचारों, डिजाइन विकल्पों और बाद की तकनीकी विरासत के आधार पर भी देखती है। दूसरा, औद्योगिक डिजाइन, नियंत्रणों और दृश्य पहचान को ऐतिहासिक साक्ष्य की तरह पढ़ना होम कंप्यूटर्स का केंद्र केवल विनिर्देशों की तुलना नहीं, बल्कि वस्तु के रूप को ध्यान से देखना है। जॉन शॉर्ट की विशेष रूप से बनाई गई तस्वीरें स्विचों, प्लगों, कीबोर्ड, लोगों, लेबल और शुरुआती यूजर इंटरफेस के छोटे विवरणों को सामने लाती हैं। यह दृष्टि जरूरी है क्योंकि घरेलू कंप्यूटर को उपयोगकर्ता सबसे पहले एक भौतिक वस्तु के रूप में अनुभव करता था। उसका आकार, रंग, कीबोर्ड की बनावट, कार्ट्रिज स्लॉट या अलग बिजली आपूर्ति यह तय कर सकती थी कि मशीन खिलौने, शैक्षिक उपकरण, घरेलू यंत्र या गंभीर कार्यस्थलीय कंप्यूटर जैसी लगे। इंटरटेक सुपरब्रेन जैसी भविष्यवादी बनावट और आईबीएम पीसी की आयताकार बेज शैली का अंतर बाजार में बदलती अपेक्षाओं को दर्शाता है। पुस्तक यह भी दिखाती है कि डिजाइन केवल सजावट नहीं था। सीमित स्क्रीन, कमांड आधारित इंटरफेस और भौतिक कनेक्टरों के दौर में बाहरी संकेत उपयोग सीखने का हिस्सा थे। विज्ञापन, पैकेजिंग और निर्देश पुस्तिकाएं इस दृश्य भाषा को पूरा करती हैं, क्योंकि वे कंपनियों के दावों और लक्षित उपभोक्ता की छवि बताते हैं। इसीलिए यह पुस्तक तकनीक को निर्जीव हार्डवेयर नहीं मानती। यह मशीनों को उस समय की औद्योगिक क्षमता, उपभोक्ता आकांक्षा और उपयोग संबंधी धारणाओं के दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। तीसरा, किट संस्कृति से कंपनियों के जाज तक, निजी कंप्यूटर उद्योग का निर्माण। पुस्तक घरेलू कंप्यूटिंग के जन्म को तैयार उत्पादों के अचानक बाजार में आ जाने की घटना नहीं मानती। इसके पीछे स्वयं बनाने वाली किट संस्कृति, इलेक्ट्रॉनिक शॉक, पत्रिकाओं में सर्किट और प्रोग्राम सूचियां तथा छोटे निर्माताओं का उभरता नेटवर्क था। अल्टेयर जैसे शुरुआती कंप्यूटरों ने यह संभावना लोकप्रिय की कि कंप्यूटिंग बड़े संस्थानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस संभावना ने तकनीकी कर्मचारियों, शौकीनों और छोटे उद्यमियों को अपने उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया। विल्शायर का ऐतिहासिक ढांचा यह रेखांकित करता है कि कंपनियां अक्सर अलगाव में नहीं बनी, कर्मचारी स्थापित संस्थाओं से निकलकर नई फर्में बनाते थे। विचार और प्रतिभाएं एक जगह से दूसरी जगह जाती थी और प्रतिस्पर्धा के साथ व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक तनाव भी पैदा होते थे। फिर भी पुस्तक इन संघर्षों को पक्ष लेने वाली दंतकथाओं में नहीं बदलती। इसका महत्व यह है कि पाठक उद्योग को महान आविष्कारकों की अकेली कथा के बजाय सहयोग, अलगाव, जोखिम और बाजार दबावों से बनी संरचना के रूप में देखता है। डीसी रेनबो जैसे उदाहरण यह भी याद दिलाते हैं कि प्रतिष्ठित निर्माता होना बाजार की जीत की गारंटी नहीं था। आईबीएम पीसी की बढ़ती मानक भूमिका ने अनेक वैकल्पिक दिशाओं के लिए जगह सीमित की। इस प्रकार पुस्तक बताती है कि तकनीकी गुण, समय, अनुकूलता और व्यावसायिक व्यवस्था मिलकर किस मशीन की दिशा को टिकाऊ बनाते हैं। चौथा, घर में कोड सीखने और डिजिटल साक्षरता बनने की प्रक्रिया। इन मशीनों का एक प्रमुख सामाजिक महत्व उनका शिक्षण माध्यम बनना था। आज के बंद और हमेशा जुड़े डिजिटल उपकरणों के विपरीत, शुरुआती घरेलू कंप्यूटर अक्सर उपयोगकर्ता से सक्रिय भागीदारी मांगते थे। उन्हें चलाने, जोड़ने, प्रोग्राम लोड करने या साधारण काम कराने में धैर्य और प्रयोग की जरूरत पड़ती थी। अनेक मशीनों के साथ आने वाली किताबें और प्रोग्रामिंग सामग्री युवा उपयोगकर्ताओं को कोड लिखने, निर्देश समझने और अपने छोटे कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरित करती थी। पुस्तक इस संबंध को व्यापक डिजिटल संस्कृति के निर्माण से जोड़ती है। मशीन केवल उपभोग की वस्तु नहीं रह जाती, बल्कि उसके अंदर क्या हो सकता है यह जानने का निमंत्रण भी बनती है। बीबीसी माइक्रो जैसे कंप्यूटरों का शैक्षिक संदर्भ और सिंक्लेयर या कमोडोर जैसी घर तक पहुंची मशीनों की लोकप्रियता इस परिवर्तन को समझने में सहायक है। यहाँ शिक्षा का अर्थ केवल औपचारिक विद्यालय पाठ्यक्रम नहीं है, परिवार, मित्र, पत्रिकाएं, उपयोगकर्ता समूह और मैनुअल भी सीखने की जगह बनते हैं। साथ ही पुस्तक के दृश्य साक्ष्य बताते हैं कि तकनीकी ज्ञान का प्रसार साफ निर्देशों, परिचित ब्रांडिंग और किफायती पहुंच पर भी निर्भर था। यह विषय विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि वह वर्तमान डिजिटल साक्षरता की जड़ों को दिखाता है। बहुत से उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर के साथ पहला संबंध तैयार ऐप चलाना नहीं, बल्कि मशीन को समझने और बदलने की कोशिश करना था। अंत में, पोर्टेबल होने के दावे, बाजार मानक और बची हुई तकनीकी विरासत, पुस्तक की चयनित मशीनें इस भ्रम को तोड़ती है कि कंप्यूटिंग का इतिहास लगातार छोटे, हल्के और सुंदर उपकरणों की सीधी यात्रा था। 1983 का कॉम्पैक्ट पोर्टेबल और 1989 का एप्पल मैकिंटॉश पोर्टेबल दिखाते हैं कि शुरुआती पोर्टेबिलिटी आज के लैपटॉप जैसी सहज धारणा नहीं थी। कई उपकरण इतने भारी या बड़े थे कि उन्हें ले जाया तो जा सकता था, पर रोजमर्रा में आसानी से नहीं। फिर भी वे कार्यस्थल से कंप्यूटिंग को अलग करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। दूसरी ओर, आईबीएम पीसी का प्रभाव बताता है कि आकर्षक या मौलिक डिजाइन हमेशा मानक नहीं बनता। अनुकूलता, व्यापारिक स्वीकार्यता और उपलब्ध सॉफ्टवेयर परिवेश ने भी बाजार को आकार दिया। पुस्तक का फोकस हार्डवेयर पर है, इसलिए सॉफ्टवेयर का विस्तृत इतिहास इसका मुख्य विषय नहीं बनता। यह सीमा जानना उपयोगी है क्योंकि किसी कंप्यूटर के वास्तविक अनुभव में कार्यक्रमों की भूमिका बहुत बड़ी थी। फिर भी हार्डवेयर केंद्रित दृष्टि से दीर्घकालिक विरासत स्पष्ट होती है। उदाहरण के लिए, एकॉर्न का नाम आगे चलकर एआरएम वास्तुकला की पृष्ठभूमि में दिखाई देता है, जो ऊर्जा दक्ष प्रोसेसरों की आधुनिक दुनिया में महत्वपूर्ण है। इस तरह पुस्तक पराजित, सीमित और सफल सभी डिजाइन दिशाओं को जोड़कर दिखाती है कि पुरानी मशीनें केवल पुरानी वस्तुएं नहीं, वर्तमान तकनीकी विकल्पों की पूर्व कथाएं हैं। निष्कर्ष में, यह पुस्तक कंप्यूटर इतिहास के उत्साही पाठकों, रेट्रो तकनीक संग्राहकों, डिजाइन विद्यार्थियों, डिजिटल संस्कृति के शोधार्थियों और उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जिन्होंने घरेलू कंप्यूटरों के दौर को देखा हो या समझना चाहते हो। तकनीकी विशेषज्ञता इसके आनंद के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हर मशीन के साथ संक्षिप्त पठनीय संदर्भ दिया गया है। फिर भी जानकार पाठकों को भी अपरिचित निर्माताओं, क्षेत्रीय बाजारों और उपेक्षित डिजाइन विकल्पों से नया परिप्रेक्ष्य मिल सकता है। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक पुराने कंप्यूटरों को केवल मॉडल नंबर या पुरानी यादों के रूप में नहीं, बल्कि उपयोग, शिक्षा, विपणन और औद्योगिक रणनीति के जुड़े हुए परिणामों के रूप में देखना सीखता है। डिजाइन संबंधी पाठकों के लिए तस्वीरें यह समझने का अवसर देती है कि भौतिक नियंत्रणों और दृश्य संकेतों ने तकनीक को अपनाने में क्या भूमिका निभाई। समान विषय की कई पुस्तकें विनिर्देशों, खेलों या कुछ प्रसिद्ध ब्रांडों पर केंद्रित रहती है। होम कंप्यूटर्स की अलग पहचान इसके संग्रहालय आधारित चयन, उत्कृष्ट वस्तु, फोटोग्राफी, विज्ञापनों और मैनुअलों जैसे सहायक दृश्य स्रोतों तथा प्रसिद्ध और दुर्लभ मशीनों के संतुलन में है। यह संपूर्ण सॉफ्टवेयर इतिहास या संदर्भ खोजने के लिए अनुक्रमणिका वाली पुस्तक नहीं है, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर कवरेज सीमित है और अनुक्रमणिका का अभाव महसूस हो सकता है। लेकिन एक दृश्यात्मक, विश्वसनीय और व्यापक प्रवेश द्वार के रूप में यह विशेष रूप से प्रभावी है। यह बताती है कि डिजिटल पीढ़ी का निर्माण कुछ अनिवार्य विजेताओं ने नहीं, बल्कि अनेक प्रयोगों, असफलताओं और अलग उपयोगकर्ता कल्पनाओं ने किया था। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एलेक्स विल्शर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।